कर सकते हैं वैसा करने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे जीवन में जब तक अंधविश्वासों से बचकर अहंकार से बचकर और सच्ची श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में जैसा जीवन हम चाहते हैं जैसा परिवर्तन हम चाहते हैं वैसा संभव नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में जब तक ठीक ठीक हमारा विश्वास न हो, जिस रास्ते पर हमें चलना है उस पर हमारा विश्वास न हो, तो आधे अधूरे मन से कोई भी यात्रा की जाए तो वो ठीक नहीं होती। तो पहले तो बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो हमारे भीतर ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ सचमुच हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ऐसा ना हो कि बीच में मन कच्चा पड़ जाए कि क्या पता मैं बना भी पाऊंगा अच्छा कि नहीं बना पाऊंगा, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम रास्ते पर चल पड़ते हैं फिर बाद को हमारे मन में कहीं कोई कमजोरी आती है कि क्या पता पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, और जिसने बताया है उसने सही रास्ता बताया है कि नहीं बताया है। ऐसे अविश्वास और संदेह के क्षण जीवन में बहुत आ जाते हैं, या कि जब हम किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं तब तो जरूर से हमारे मन में वो अविश्वास और संदेह उत्पन्न होने लगता है। इसलिए पहली जरूरत है कि हम पूरी दृढ़ता और साहस के साथ कोई भी रास्ता शुरू करें तो पूरा हमारा विश्वास उसमें हो, हमारी श्रद्धा उसमें हो, और वो श्रद्धा भी हमारी तामसिक ना हो राजसिक ना हो, वो सात्विक श्रद्धा हो। जब हम बहुत महत्वाकांक्षी होकर के विश्वास करते हैं वो सब हमारी राजसिक श्रद्धा है, क्योंकि हम उस श्रद्धा के चलते, उस विश्वास के चलते अपने संसार को ही बढ़ाते हैं। और या फिर हम ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि अब हमको क्या करना, हमने तो भगवान पर विश्वास कर लिया, भगवान ही सब कुछ करेंगे, और आलसी बन करके बैठ जाएं और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोई प्रयास ही न करें, तब भी ऐसी तामसिक श्रद्धा भी हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठा सकती। सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए, जिससे कि मेरा कल्याण हो, इसलिए मैंने विश्वास किया है, और मैं भगवान के सामने और किसी चीज के लिए याचक बन के नहीं गया हूं, मैं तो सिर्फ अपने उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए भगवान के गुणों का स्मरण करने, उनको थैंक्स देने गया हूं, उनको धन्यवाद देने, एक अहोभाव से भर करके मैं भगवान के प्रति श्रद्धा कर रहा हूं कि अच्छा हुआ मुझे आपने मेरे ही आत्मा के प्रति विश्वास पैदा कर दिया, आपके सानिध्य में आकर के मुझे अपने आत्मविश्वास को जागृत करने में मदद मिल गई है। अगर ऐसी हमारी श्रद्धा है तो हमारा रास्ता बहुत आसान है, हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जो अपने जीवन को अच्छा बनाने की इच्छा रखते हुए भी नहीं बना पाते हैं, हम ऐसे लोग हैं, हम में से हमें विचार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे श्रद्धा में, हमारे विश्वास में कमजोरी है, तब तो हम और चाह कर भी अपने जीवन को ठीक नहीं बना पाते। अगर हमारे श्रद्धा नहीं, हमारे बहुत पक्का विश्वास है, तो जरूर हम अपने जीवन को और अच्छा बनाने में देर क्यों लगाएंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति ने प्लॉट खरीद लिया हो और जगह भी उसने फाउंडेशन भी बना ली हो, तो बताइएगा फिर क्या वो बिना एक छत बनाए उसमें बैठा रहेगा क्या, पानी और धूप सहन करेगा? नहीं, वो पानी और धूप से बचने के लिए एक शेड बनाएगी बनाएगा। और जिस व्यक्ति ने सिर्फ ये सोच रहा हो कि मुझे तो शेड बनाना है और पानी और धूप से बचना है, और वो शेड बना ले और फाउंडेशन तो नीचे है ही नहीं, और तो ऐसा व्यक्ति भी सक्सेस नहीं होगा। दोनों ही स्थितियां, हमने अगर हमारे अंदर श्रद्धान हो गया है तो जरूर से हमारे भीतर उस रास्ते पर चलने की इच्छा जागृत होनी चाहिए, और अगर हम चल पड़े हैं तो जरूरी है कि हमारा विश्वास हम बार बार टटोलते रहें कि कहीं कोई संदेह की बात उस विश्वास को कमजोर तो नहीं बनाती है। और आवश्यक है जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जिस रास्ते पर चल करके हमें जहां पहुंचना है उसका ज्ञान है कि नहीं, मैं अपने आत्मा की उस परम विशुद्ध अवस्था को पाना चाहता हूं जिस पर मुझे विश्वास मैंने किया है, उसका थोड़ा बहुत ज्ञान भी तो होना चाहिए कि वो अवस्था कैसी है। बस यही आत्मज्ञान हमारे अच्छे बनने के लिए जरूरी है, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान, ये दोनों अगर हमारे भीतर हों तो हमारे आत्मबल को हम जागृत करके और ठीक ठीक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इतना सा हमारा विचार है, इसी विचार को हम रोज रोज रिफाइन करते हैं, उसके डेप्थ में जाकर के उसको सोचते हैं, बड़ी बारीकी से सोचते हैं, जो हमारे मौजूदा स्थिति में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जहां जहां हमें मुश्किल की आशंका होती है वहां हम उसको क्लियर करते चले जा रहे हैं। देखिए एक बहुत लंबी विचार याद रहा है, अभी जबकि हमने कुछ भी करना शुरू नहीं किया है, सिर्फ एक विचार कर रहे हैं, पर वो विचार भी हमें और हमारे जीवन को परिवर्तित करने में तभी सहयोगी बनेगा जब हम उसकी एक एक बात को ठीक ठीक ढंग से समझ करके और अपने जीवन में भी उतारते चले जाएंगे। पिछले दिनों हमने फिर अपने आत्मबल को जागृत करके जो कषायें मुझे पाप में डालती थी, जिनकी वजह से मेरे द्वारा पाप हो जाता था, जब मेरा लोभ जागृत होता है तो मुझे बहुत आकांक्षा होती चीजों को इकट्ठा करने की, और जैसे ही मैं चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करता हूं मुझे झूठ बोलना पड़ता है, मुझे हिंसा करनी पड़ती, मुझे चोरी करना पड़ती, और जब चीजें मेरे पास आवश्यकता से अधिक आ जाती हैं तो फिर मेरे मन में बहुत सारी विकृतियां जन्म लेती हैं कि इस धन पैसे का क्या करूं, तो मैं व्यसन में पड़ जाता हूं, तब फिर मैं अब्रह्म का सेवन करता हूं, मैं अपने उस ब्रह्म आत्मा के निर्मल स्वभाव से विलग होकर के अपने विकारी स्वभाव की तरफ अग्रसर हो जाता हूं। एक छोटी सी लोभ कषाय मेरे भीतर जागृत होती है तो मेरे भीतर इतने ब्रॉड चेंजेस आते हैं, अब बताइए क्या करूं मैं उसके लिए। तो ये तो बहुत कठिन है अपने लोभ को जीतना। तो लोभ की हमने दिशा बदल दी, दिशा बदल के देखी कि अब हम संसार का लोभ नहीं करेंगे, हम तो अपने कल्याण का लोभ करेंगे, हम तो अपने धर्म ध्यान के लिए लोभ करेंगे कि कहीं से भी 24 घंटे में जहां समय निकल आएगा वहीं हम बैठ जाएंगे और अध्ययन करना शुरू कर देंगे, या कि सत्संग कुर्सन करना शुरू कर देंगे, या कि कम से कम इतना तो करेंगे कि हमसे पाप ना हो। तो हमने तो कल यहां तक तय कर लिया है कि दूर दूर तक अब जाने की आवश्यकता नहीं, जितना कम एरिया में हम रहेंगे उतने ही ज्यादा जो है और हमारे कषायों में मंदता आएगी, हमसे पाप कम से कम होंगे। तो एरिया को लिमिटेड कर लिया, मर्यादाएं अपनी बना ली ताकि पाप संभव ही ना हो सके, क्योंकि अनलिमिटेड अगर हम रहेंगे, अगर हमारी इच्छाएं अनंत की तरफ चली जाएंगी तो हमसे तो पाप निरंतर ही होंगे। अब क्या करें, हम अपनी इच्छाओं को कम करने के लिए सीमाएं निर्धारित कर लें, मैं इससे ज्यादा करूंगा ही नहीं इच्छा, अगर होएगी भी तो मैं उस इच्छा की पूर्ति नहीं करूंगा। अब क्या करें, अगर इच्छा ही होती और उसको नहीं रोक सकते हैं तो इच्छा की पूर्ति के साधनों को तो मैं लिमिटेड कर सकता हूं। मेरे मन में आता है कि मैं 10 करोड़ का मालिक हूं, नहीं कोई जरूरत नहीं, मैंने तो 1 करोड़ फिक्स कर लिया है कि 1 करोड़ से ज्यादा इच्छा होगी भी तो पूर्ति नहीं करूंगा। इस तरह से जो है हमने अपने को इतना मर्यादित करने की कोशिश कर ली है। देखिए अपने मन से ही करना पड़ेगा, जहां जहां हमें लगता है कि यहां संभावना है वहां झट से अपनी मर्यादा निर्धारित कर ली, एक दिन के लिए सही, 1 घंटे के लिए सही, 1 मिनट के लिए भी सही। आप आश्चर्य करेंगे, 1 मिनट भी बहुत बड़ी चीज होती है। अभी व्रत आने वाले, व्रतों के 2 दिन पहले और गढ़ाकोटा के चतुर्मास में एक बहुत बड़े व्यक्ति एजेड मतलब हो गए होंगे 60 साल के, कहले महाराज कोई नियम दे अब व्रत आने वाले। हमने कहा आप तो सब करते होंगे, अब एक तत्व वो सब तो करते हैं, पर आपसे कोई एक नया सा नियम लेना चाहता हूँ, नए किस्म का नियम दे। ये वाली चीज है नहीं कि एक आसन वो तो हम करते हैं और शुरू का उपवास भी आखिरी का उपवास भी और वो सब चीजें, हम तो दाढ़ी तक नहीं बनाते व्रतों के दिनों में, हम हिंसा का कोई साबुन आबुन का उपयोग नहीं करते, सब बातें, कोई एक चीज दीजिएगा। मुझे उन वृद्ध के बारे में कुछ दिन पहले ही उनके लड़का वो कह रहे थे कि महाराज जी अगर वो व्रतों में कोई नियम लेवे तो आप और मत दिलाना, उनको टेलीविजन नहीं देखने का दिलाना, बड़ी मुश्किल। अब ठीक है, किसी के अंदर कोई चीज हो सकती है, मे बी पॉसिबल, ऐसा मत सोचिएगा, कमजोरी है व्यक्ति की अपनी अपनी। और फिर उन्हें धीरे से कहा कि हमारे पिताजी की तो ऐसी आदत हो गई है अब कि पहले कभी थिएटर में भी नहीं गए हैं फिल्म देखने, लेकिन 6-6 घंटे तक हो जाते तो थोड़ा लिमिट कर दीजिएगा। बड़ी मुश्किल, मैंने कहा मैं तो अपने मन से कहूंगा नहीं। अब उन्होंने खुद मुझसे पूछ लिया कि कोई आप अपनी तरफ से नियम बता दीजिएगा। मैंने कहा कि इतना कर सकते हैं आप, बोले क्या, आपको ये तो नहीं मालूम पड़ेगा कि मैं टेलीविजन देखता हूं। अब मैंने कहा कि अगर मालूम भी पड़ गया तो वो तो वो नहीं कम कर सकता मैं, और आप चाहे जो करवानी। उन्होंने पहले से ही कह दिया, बड़ी मजे की बात घटना हुई थी, आप याद आ गई वो मुझे यहां बैठने पर, कैसे अपने ऊपर कंट्रोल करना, कैसे अपने को मर्यादित करना, ये बहुत कठिन। जिन चीजों के हम एडिक्ट हो जाते हैं उन चीजों को हम सहसा नहीं छोड़ पाते, ये सब हम लोगों की कमजोरी है, लेकिन उसी को तो जीतना है। और क्या करना है, काहे के लिए बैठे हैं अपन घंटे भर यहां, अपना वेस्ट करने थोड़ी बैठे हैं यहां, हम अपनी उन छोटी छोटी सी कमजोरियों पर विचार करने बैठे हैं कि मेरे अंदर क्या क्या कुछ है और उन कमजोरियों से मैं बच सकता हूं कि नहीं बच सकता, कि अब सारे जीवन उन्हीं कमजोरियों के चलते मैं अपने मरण को प्राप्त हो जाऊंगा। नहीं, संभावनाएं बहुत हैं, पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज दोनों हैं, तब उस पर हम विचार कर रहे हैं। और वो कहने लगे कि मेरे से नहीं छूटेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके 6 घंटे में से जरा भी कम नहीं करवाऊंगा, मुझे सिर्फ आपसे ये कहना है कि आप 1 मिनट मेरे लिए छोड़ दें, बस सिर्फ 1 मिनट। ठीक है महाराज, 1 मिनट में क्या फर्क पड़ता है, 1 मिनट पहले बंद कर, लेकिन ध्यान रखना पूरे 6 घंटे देखना पड़ेगा, उसमें से 1 मिनट मेरे लिए छोड़ना, सिर्फ 1 मिनट। और बिल्कुल हिसाब से ऐसा नहीं चलेगा कि 2 छोड़ दिए 5 छोड़ दिए, ऐसा भी नहीं, 1 माने 1, और पूरे 5 घंटे और 59 मिनट पूरे देखना, 1 मिनट भर छोड़ देना मेरे लिए। दूसरे दिन मेरे पास आए, कहले महाराज वो पूरा ही छुड़वा दूं। हमने कहा क्या हुआ, हमने तो एक मिनट कहा था। कहने हाँ वो हम समझ गए आप बहुत होशियार हो। क्या हुआ, केती भी ढंग से देख ही नहीं पाए, वो बेर बेर लगाती कि वो एक मिनट अब महाराज को वो गड़बड़ हो जाए, ऐसे कई दिन नहीं देखने हमें, अब एक मिनट भी मुझे बचाना है, ऐसी भावना मेरे उन 5 घंटे 59 मिनट पर भारी हो गई। एक छोटा सा भी अगर हमारा संकल्प है तो वो हमारी भारी से भारी कमजोरियों पर भी बहुत वजनदार हो जाता, भारी हो जाता। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं, ये तो एक उदाहरण था जो कि घटित हुआ उनके जीवन में। ये एक तरह का अपने लिए देने वाला साइको ट्रीटमेंट है, अपने मन को ही समझाने का। जैसे कि अपन पुरानी घटनाएं पढ़ते हैं कि जनक अपने घर में वैरागी थे, या कि भरत चक्रवर्ती अपने घर में वैरागी थे, वो ठीक वैसा ही जैसे कि पानी लबालब भरा हुआ कटोरा और पूरे उनके महल को देख करके वो वापस लौटे हैं, पूछते हैं कि क्या देखा। कुछ नहीं देखा, क्योंकि चिंता थी कि एक बूंद भी अगर नीचे गिर जाएगी तो मैं मरण को प्राप्त हो जाऊंगा। ठीक ऐसे ही अगर हम एक उपाय अपने जीवन में करना चाहें, कितनी भी हमारे अंदर कमजोरियां हैं लेकिन उन सबको जीतने का उपाय अगर एक बार हम तय कर लें कि कोई संकल्प हम ले लें। पिछले दिनों हम उसी संकल्प को भिन्न भिन्न तरह से ले रहे हैं। मैंने 5 पापों से बचने का संकल्प ले लिया है, पर फिर भी मुझे घर गृहस्थी में 5 पाप करना पड़ते हैं, क्या करूं, उसकी लिमिट बना दी है। इसके बाद और जो उसके गुणों में वृद्धि करने वाले गुण व्रत हैं, मैं अब अनावश्यक पाप नहीं करूंगा, इतना तो हो गया। ऐसा पाप जिससे दूसरे का मेरा तो कोई प्रयोजन नहीं सधता है बल्कि दूसरे की हानि ही होती है, ऐसा निष्प्रयोजन पाप भी नहीं करूंगा, अनर्थ दंड नहीं करूंगा, अपने भोगो भोग की रोज रोज सीमा रखूंगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे मन में तो अब और अधिक आगे बढ़ने की भावना है, क्या करूं। तो कुछ थोड़ी देर निकालो, घड़ी 2 घड़ी निकालो, जिसमें बैठ करके और 5 पापों से मुक्त होकर के अपने आत्मा का चिंतन, या कि पंच परमेष्ठी का चिंतन, या कि जो हर्ष विषाद हैं उनके बीच कैसे समता से रहा जाए, इसका अभ्यास किया जा सके। इसलिए पिछले दिनों अपन समझ रहे थे कि उस जीवन में विषमताओं के बीच भी मैं कैसे अपने को सुख दुख के बीच, जय पराजय लाभ और हानि के बीच मैं कैसे उस समत्व को प्राप्त कर सकूं, उसके लिए मुझे सामायिक का अभ्यास करना चाहिए। जिस सामायिक को मुनिजन आवश्यक के रूप में 3 संध्या कालों में 2-2 घड़ी कम से कम करते हैं, अधिकतम 6 घड़ी 2.25 घंटे तक करते हैं, और कैसे वे आत्म ध्यान में लीन रहे आते हैं, उसका मैं थोड़ी सी झलक तो पालूं अपने इस गृहस्थ जीवन में, तो सब पापों को एक किनारे रख दिया। करना है घंटे भर बात करूंगा, आधे घंटे बात करूंगा, अभी तो आधे घंटे में कुछ नहीं करूंगा, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जावे, मेरे ये आधे घंटे तो मेरे अपने लिए हैं, जिनमें मैं समता सीखूंगा, जिनमें मैं साम्य भाव रखना सीखूंगा, जिसमें मैं हर्ष विषाद के होते हुए भी हर्ष विषाद नहीं करूंगा। आज ही मुझे मालूम पड़ा है कि मुझे मुनाफा हुआ है, तो कोई बात नहीं, मैं इस आधे घंटे उस मुनाफे की याद करके एक्साइट नहीं होऊंगा, अहंकार नहीं करूंगा कि मैं कितना सफल व्यापारी हूं, या कि आज मेरे व्यापार में लॉस हो गया है तो मैं बहुत विषाद से घिरा हूं, पर फिर भी इस आधे घंटे में मैं उस विषाद से मुक्त होने की कोशिश करूंगा कि क्या धरा हुआ है, कल ज्यादा आ गया था, आज कमती हो गया है, कल फिर संभव है कि फिर कम ज्यादा आ जावे, मैं व्यर्थ में विषाद क्यों करूं। ठीक है, आधे घंटे बाद विषाद करूंगा, संभव है फिर से मुझे विषाद घेर ले क्योंकि गृहस्थी है, पर अभी आधे घंटे तो मैं विषाद नहीं करूंगा, ना मैं अहंकार करूंगा ना संक्लेश करूंगा। क्या दोनों स्थितियों से ऐसे एक घड़ी के लिए बचने का कोई अभ्यास किया जा सकता है? किया जा सकता है, इसी पे तो हम विचार कर रहे हैं कि एक निश्चित स्थान पर जाके हम बैठेंगे, शरीर को तो बिठा ही देंगे, वाणी से नहीं बोलेंगे, उस स्थान पर पहुंच गए हैं और अब मन में जो है क्या विचार आएगा, नाना प्रकार के विचार आएंगे, उनको एक दिशा देनी है, उन विचारों को सामायिक, इसी का नाम। मैं अपने हर्ष विषाद के बीच भी और उस संधि काल में उन हर्ष और विषाद के बीच की संधि पर बैठ सकूं, जहां ना हर्ष है ना विषाद है, तटस्थ होकर के मैं जिन क्षणों में बैठता हूं वे मेरे क्षण। जैसे तटस्थ के मायने क्या है, नदी के किनारे जाके बैठे हैं, लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, ना आती लहरें मुझे हर्ष दे रही हैं, न जाती लहरें मुझे विषाद में डाल रही हैं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं लेना। नदी है, सागर है, उसके किनारे लहरें तो उठती हैं, उसी में से उठती, उसी में समा जाती हैं। ऐसे ही मेरे भीतर मेरी चेतना में से बहुत से विचार उठ रहे हैं, उसी में समा रहे हैं, मैं उनको सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बन के देख रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। इस तरह की स्थिति क्या हमारे नहीं बन सकती है? बन सकती है, हमें अभ्यास करना पड़ेगा। एक निश्चित स्थान का, एक निश्चित समय पर बैठूंगा, ऐसे स्थान पर बैठूंगा निर्व्याक्षेपे, जहां मुझे कोई बाधा ना हो, ऐसा स्थान चुन के बैठूंगा, ऐसे समय में बैठूंगा जबकि मेरे पास मिलने जुलने आने वाले लोगों की संख्या कम रहती है, ताकि मैं निर्विकल्प होकर के, और अगर मुझे ऐसा भय बना हुआ है कि कोई मिलने आ जाएगा तो आधे घंटे तक तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं अपना टाइम एक कागज पे लिख के रख दूंगा कि ठीक इतने बजे मैं अभी ध्यान में बैठ गया हूं, अब आप आओ भी तो इतनी देर बाहर ही वेट करना। दरवाजे पे चिपका दूंगा मैं एक स्लिप कि अब मैंने बंद करके आधे घंटे के लिए इतने बजे से, ताकि वो अगर 15 मिनट बाद आए तो उसे पढ़ने में आ जाए कि भैया अभी 15 मिनट सामायिक और करेंगे, 15 तो हो ही गए, और अगर 25 मिनट बाद आए तो उसे मालूम पड़ जाए, और 5 मिनट बाद ही आए तो वो 25 मिनट वेट कर सके। हमें विकल्प ना हो, इस तरह का इंतजाम करते हैं क्या? करना चाहिए, तभी तो बनेगा। घर गृहस्थी के अंदर ये सब प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन उसके बीच भी ऐसा कह के आप टालना चाहें कि भैया महाराज जी घर में होत नहीं है, ये सब नहीं हो सकता है, तो टाल दो भाई, तो मैं आपसे क्या कह सकता हूं? आप टाल देंगे तो मैं थोड़ी जबरदस्ती कहूंगा कि आप तो बैठो ही, पर जिसका मन है, जिसको करना है, तो वो चाहे तो इस तरह बहुत आसानी से इस प्रक्रिया को कर सकता है। तो फिक्सेशन ऑफ टाइम, फिक्सेशन ऑफ प्लेस, फिक्सेशन ऑफ पोजिशन, एक निश्चित अवस्था में रोज बैठा करूंगा। पालथी मार के बैठना है तो पालथी मार के ही बैठूंगा, बार बार आसन न बदलना पड़े, 10 मिनट के लिए मेरे लिए ये पालथी वाली आसन सिद्ध हो जाए, ताकि निर्विकल्प होके मैं बैठ सकूं। और उसके बाद अब कहते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल तो हो गया, अपने भावों में क्या विचार करना चाहिए। अशरण मशो मनित्यम दुख मनात्मान माओ साम विभवम मोक्षस्तद विपरीता एति ध्यायन्तु सामयिक। अब मैं जरा सा इस तरह का ध्यान करूं सामयिक में बैठ के, अशरण अशुभ अनित्यम दुखम अनात्मान, इन 5 विशेषणों से युक्त है ये संसार जो मुझे दिखाई पड़ता, विचार करूं संसार के बारे में कि अशरण है। यहां देखो तो मैंने सोचा था कि इनके सहारे मैं अपना जीवन पूरा कर लूंगा, लेकिन मैंने जिसका सहारा लिया वो या तो रास्ते में ही मेरा साथ छोड़ के कहीं गायब हो जाता है, या साथ में भी चलता है तब भी मेरे हर्ष और विषाद में सिर्फ सांत्वना दे पाता है, मुझे मेरा हर्ष विषाद तो खुद ही सहन करना पड़ता। जब मेरे ऊपर दुख आता है तो मेरी माँ मुझे कितना ही चाहती हो, एक माँ अपने बेटे के दुख में दुखी होकर के, और चाहे तो अपने प्राण भी दे दे, लेकिन उस अपने बेटे के दुख को एक डिग्री भी कम नहीं कर सकती, इतना तो अशरण है ये संसार। मैं उसमें शरण खोजता हूं, शरण तो मेरी सिर्फ मेरे भीतर है, मेरे अपने परिणामों में है, मेरे अपने धर्म की मुझे शरण है, और कोई यहां संसार में शरण नहीं है। अशुभ तो इतना है कि जहां मैं सोचता हूं कि खाने से और वेदना मिट जाएगी, थोड़ा सुख होगा, लेकिन एक खाने के बाद ज्यादा सुख होना चाहिए, 2 के बाद और ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां तो 10-15 खाने के बाद पीड़े शुरू होने लगती। बताइए कौन ऐसा होगा इस कैलकुलेशन के हिसाब से चलता हो कि 1 रसगुल्ला खाने में थोड़ा सुख है तो 2 में और ज्यादा, 3 में और ज्यादा, 25 में, 50 में और ज्यादा, खाते चले जाओ तो सुख ही सुख, तकलीफ हो जाएगी। अगर उसमें सुख था तो फिर मुझे उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के बाद सुख की भी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए थी। नहीं बढ़ती। इसका मायना है कि उसमें कहीं ना कहीं मैंने सिर्फ सुख माना था, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। यहां पर जो भी सुख मिलता है वो भौतिक सुख है, उसकी एक लिमिट है। उसके बाद तो वही सुख मुझे अल्टीमेटली दुख में ही ले जाता है। इसलिए ये संसार अशुभ है। संसार अशुभ है कि मायने सिर्फ इतना ही है और नहीं है कि यहां हमारा अपना भ्रम अगर नहीं तोड़ेंगे हम, तो वो भ्रम हमारा एक दिन अपने आप टूटना तोड़ना पड़ेगा। हमको टूट ही जाएगा वो भ्रम कि ये संसार बिल्कुल अशुभ है। यहां हम सुख खोजते हैं तो उसमें दुख मिल जाता है। एक रसोइया राजा का बहुत प्रिय रसोइया था, रोज राजा को बढ़िया चीज बना के देता था। और एक दिन उसने खीर बनाई, राजा को बहुत पसंद थी। राजा ने उस दिन तो बहुत तारीफ की। रसोइये के मन में आया कि जब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मैं तो इनका नौकर हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं रोज बना दिया करूंगा। उसने दूसरे दिन भी बनाई, दूसरे दिन जरा तारीफ तो की लेकिन उतनी नहीं की जितनी पहले दिन की थी। रसोइये ने सोचा कि और जरा बढ़िया किस्म से बनाऊंगा। उसने तीसरे दिन और बढ़िया किस्म से बनाई, लेकिन पहले दिन से भी अच्छी बनी थी तीसरे दिन। पर पहले दिन जितनी प्रशंसा राजा ने की थी, तीसरे दिन तो कुछ नहीं की, चुपचाप खाली। और चौथे दिन उसने सोचा कि और बढ़िया खीर बनाऊंगा। तो चौथे दिन तो राजा देखते ही साथ खीर आपे से बाहर हो गए। मैं तुम्हें भगा दूंगा अगर तुम्हें मेरे यहां रसोईया रहना, तो ये रोज रोज एक ही आइटम नहीं चलेगा। अरे वो मुश्किल में पड़ गया कि हुजूर मैं तो आपका नौकर हूं, आपने जिस चीज की प्रशंसा की मैंने एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, मैं तो रोज बना के खिला सकता हूं वैसे ही, इसलिए मैंने आपको बना दी। पर आज आपको आपे से बाहर देख करके मुझे मालूम पड़ गया कि कोई भी चीज इस संसार में स्वाद थोड़े ही समय देती है। उसमें स्वाद हम मान लेते हैं पर वो तो अंततः बेस्वाद ही है। अब तो मैं उस चीज को खोजूंगा जिसके पाने के बाद स्वाद बढ़ता ही चला जाए, जिसके बाद आनंद बढ़ता चला जाए। अब आपकी रसोई गिरी भी मेरे से नहीं हो सकेगी, प्रणाम आपको। वो चीज खोज लूंगा मैं जो कि रोज बेस्वाद ना होकर के और अधिक अच्छी मालूम पड़ने लगे। मैं वो सुख ढूंढ लूंगा जिस सुख के पाने के बाद मुझे दुख ना हो, वरना तो यहां सुख के पीछे दुख लगा ही हुआ है। ऐसा अशुभ है ये संसार, ऐसा विचार अगर हम करते हैं तो देखिएगा कैसा आनंद आता है सामायिक में। अशुरण अशरण अशुभ अनित्यम, यहां जिस चीज को मैं लाता हूं सोच करके कि ये तो हमेशा रहेगी, लेकिन वही चीज एक दिन नष्ट हो जाती है। यहां तक कि मेरा जीवन भी धीरे धीरे एक एक सांस करके मरण की तरफ चला जा रहा है, मेरा ध्यान ही नहीं जाता, इतना फ्रेबल है ये। अगर हम यहां पर पत्थर पर लकीर खींचते हैं तो कुछ दिन दिखाई पड़ती है, रेत पर खींची लकीर उससे पहले मिट जाती है, और पानी पर खींची लकीर तो उससे पहले मिट जाती है। पर मुझे लगता है कि जो वो मैंने जोड़ के रखा है वो बहुत दिन तक चलेगा, वो भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। यहां कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, यहां सब चीजें अनित्य हैं। अब मुझे ये मालूम पड़ने लगा तो मैं क्या करूं, अनित्य है इसलिए मैं उन सबको छोड़ दूं? नहीं, मैं तो सिर्फ विचार कर रहा हूं कि अनित्य के साथ अनित्य के जैसा ही व्यवहार करूंगा, उनको मैं शाश्वत मान के सजो के नहीं रखूंगा। उपयोग जरूर कर दूं, चीजों का उपयोग वे ही कर सकते हैं जो चीजों को अनित्य मानते हैं, जो हमेशा शाश्वत मान के सेंत के धरे रहते वे नहीं उपयोग कर सकते। खराब ने हो जाए जा गंजी आवाई तो स्टेनलेस स्टील की खरीद के ले आए तो रखे रहो भंडरिया में, तारो लगाए रहो, दूध काय में तपे हो। अब अगर दूध तपाना है तो धरना पड़ेगी, काली होगी, खराब होगी। अब सेंत के रखो, अब कपड़ा तो बनवाए हैं बहुत अच्छे हैं, मगर पैर हैं तो मैली हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, धरे रहो ने पहनो। लेकिन वो खराब हो उसके पहले मैं उसका उपयोग कर लूंगा, मुझे मालूम है कि एक दिन खराब हो जाएंगे। मैं ऐसे भ्रम में क्यों जीऊं कि ये कभी खराब नहीं होंगे, ये सब चीजें जो है हमेशा शाश्वत है। मैं ऐसा भ्रम पाल लेता हूं इसलिए मैं दुखी होता हूं। उनके फट जाने से, उनके गंदे हो जाने से मुझे कोई दुख नहीं होता, मुझे पहले से ही मालूम था कि ये ऐसी होने ही, इनका स्वभाव ही वैसा है, अनित्य ही है। रास्ते से चले जाता था, कांच का सामान लेकर के आया था एक व्यक्ति, और जरा सा धक्का लगा और सारा सामान नीचे गिरा और टूट गया। अब रोना चाहे तो रोए, लेकिन नहीं रोया, वो मुस्कुराता खड़ा है। लोग उसके चारों तरफ खड़े हो गए, कहते कि क्या हुआ। तो वो कहता कि मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ। यू डोंट सी एनी फूल बिफोर मी, मुझसे पहले तुमने कोई बेवकूफ है मूर्ख आदमी नहीं देखा जो इस तरह से मुझे घूरते खड़े हुए। वो कहते हैं कि तुम अपने मुंह से अपने को मूर्ख कह रहे हो। बोले हाँ, आप मुझे अपनी मूर्खता समझ में आ रही। मैं तो सोचता था जब खरीदता रहा था कि ये सामान बिल्कुल कभी नहीं टूटेगा, लेकिन एक धक्का लगा और टूट गया। अब मुझे मालूम पड़ गया है कि ये यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है। घर वापस लौट के जाता है, लोग सोचते हैं कि उदास होगा, लेकिन मुस्कुरा रहा है और सारा सामान टूटा हुआ है। कहते कि सब टूट गया। बोले ये कहो कि दुकानदार के यहां से आधे रास्ते तक कैसे ठीक चला आया। मैं तो यही सोच रहा हूं, ये तो टूटा ही हुआ था, मैंने इसको ऐसा, कांच है, कांच की नजाकत इसमें है कि वो गिरे और टूट जाए, वरना कांच क्या। अब ये मुझे मालूम पड़ गया, ये संसार के सुख मेरे से अलग हो, क्षणभंगुर हो, ये उनकी तासीर ही है, ये उनका नेचर ही है, मुझे इसका विश्वास। ऐसा विचार कर रहा हूं मैं बैठे बैठे अपने सामायिक के समय में, क्या करना है मुझे, यही विचार कर रहा हूं। अनित्य है संसार, दुख रूप है, जहां देखता हूं थोड़ी सी, थोड़ा सा सुख जो मालूम पड़ता है वो वास्तव में दुख ही है, दुख के प्रतिकार को ही। जैसे कि कोई व्यक्ति खुजली हो जाने पर उसे खुजाता है तो सुख तो मालूम पड़ता है, लेकिन घाव और गहरा होता चला जाता। खुजली खुजाने का सुख वास्तव में सुख नहीं है, बल्कि अपने दुख का उपाय है। संसार भी ऐसे ही अपने भोग विलास की सामग्री इकट्ठी करने में जो आनंद आता है वो अंततः मुझे दुख ही देने वाला। ये मुझे हमेशा विचार में बना रहे। अनात्म स्वरूपम, ये मेरे आत्मा से बिल्कुल अलग की स्थिति है। ये जो संसार है वो मेरी वास्तविकता नहीं है, मेरी वास्तविकता कुछ और है। मोक्षस तद विपरीता एतिध्यायन तु श्याम, मोक्ष में शरण है, मोक्ष शाश्वत है, अनित्य नहीं है, दुख रूप भी नहीं है, वो तो सुख रूप है, अनात्म रूप भी नहीं है, वो तो मेरे आत्मा की चरम विशुद्ध अवस्था ही है मोक्ष। मैं इस तरह संसार और उससे विपरीत मोक्ष दोनों का विचार करता हूं, ये मेरी सामायिक है। इस तरह अगर हम चाहें तो सामायिक में शांति से बैठ के, इसलिए फिर आचार्यों ने लिखा है कि चेलोप श्रष्ट मुनिरिव ग्रही तदा यात यति भावम। सामायिक में ध्यान में लीन संसार की असारता और मोक्ष की प्राप्ति का विचार करने वाला गृहस्थ सामायिक में ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि किसी निर्ग्रंथ साधु के ऊपर किसी ने उपसर्ग से वस्त्र डाल दिए हों। चेलोप श्रष्ट मुनि ग्रही यता याति यति भाव, गृहस्थ मुनि बने को प्राप्त हो गया है ऐसा मालूम पड़ रहा है, ध्यान में इतना लीन है। गृहस्थी में रह करके भी भरत चक्रवर्ती की अगर प्रशंसा की जाती है तो सिर्फ गृहस्थी में इसलिए की जाती कि 96,000 रानियां, 9 निधियां और अपार वैभव के बीच भी वे 2.25 घंटे जब ध्यान में लीन होते थे, सुबह दोपहर शाम, तो दुनिया उनके लिए कुछ नहीं होती थी उस समय। और इतनी कर्मों की निर्जरा करी कि फिर दीक्षा लेने के अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि पूरे जीवन कर्मों की निर्जरा करते रहे थे। ऐसे नहीं समझना कि आखिरी समय ही हम सब कुछ कर लेंगे, आखिरी समय करने अकेले से नहीं होने वाला। पूरे जीवन जिसने कर्म बांधे कम हो भैया, जिसने इकट्ठो कम करो हुए, और बल्कि जो ने इकट्ठो हो वो खुद चुकता करो हुए हिसाब, तो उसका हिसाब ही आखिरी में चुपकाएगा। और जिस ऐसा जिंदगी के एक झटके में चुक जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमें अगर अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ अपने करना है तो उसे रोज रोज इसी तरह रोज सामायिक में सुबह दोपहर शाम बैठ करके, और हम चाहें तो विचार करते हैं, और उन क्षणों में हम निर्ग्रंथ हो गए हैं, हम महाव्रती के समान।